मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 27 नवंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं विकास कुमार का, जिनका गांव है केमरथु बिहार से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। मित्रों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण विधेयक पर बातें करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत थोड़ा सा ही वक्त उसके लिए मिल पाएगा, क्योंकि आज मेरे पास छोटे छोटे घटनाओं को लेकर के बहुत सारी घटनाएं हैं, शायद इसी में ही ज्यादातर समय खप जाए, लेकिन आइए फिर भी देखते हैं कि कितना कुछ हो पाता है। आज ढेर सारी घटनाएं मैं आपके सामने रख रहा हूं और ये सारी घटनाएं इनफैक्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ही मैंने चुने हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों। अब आज मैं जिन घटनाओं की आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, हो सकता है कि अलग अलग रूप में आपसे एग्जामिनेशन में न पूछे जाए, लेकिन मेन एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट होता है, प्लीज उसे थोड़ा ध्यान से सुने। मेन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह के होते हैं, जैसे कि एक माली है, वो बगीचे में जाता है और एक एक फूल तोड़ता है, और फूल तोड़कर लौटने के बाद वह उनकी ढेरी बना लेता है और फिर एक एक फूल को धागे में पिरो पिरो कर माला बनाता है। यानी कि मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के स्वरूप कुछ इस तरीके के होते हैं कि आप अलग अलग घटनाओं को जोड़ करके और एक उत्तर तैयार कीजिए, और यहां मैं आज जिन घटनाओं की चर्चा करने जा रहा हूं ये कुछ इसी तरह की छोटी छोटी घटनाएं हैं जो अलग अलग उत्तरों में आपके काम आएंगी। तो आइए उन घटनाओं को देख लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री को लेकर के जो टसल चल रही है वो सब आप देख रहे हैं, अखबारों में बहुत विस्तार के साथ आ रहा है, न्यूज चैनल पर भी बहुत विस्तार के साथ चीजें आ रही हैं, इस पर एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, धीरे धीरे आर्टिकल्स भी आने शुरू हो जाएंगे। अभी मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है और इसको लेकर के हमारे संविधान से जुड़े हुए, हमारी राजनीतिक प्रणाली से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न भी बन रहे हैं, बहुत से सवाल उठकर खड़े भी हो रहे हैं, तो इसके लिए संभव नहीं है कि मैं थोड़ी से समय में इसकी बात कर सकूं, तो इस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मैं केवल यहां इतना जरूर कहना चाहूंगा कि घटनाओं पर निगाह रखें और इससे जुड़े हुए जो एडिटोरियल कमेंट्स और लेख आपको पढ़ने को मिलेंगे उन्हें ध्यान से पढ़ें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट भी कर लें। यहां मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स को विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि दोस्तों आप अपने पॉलिटिकल साइंस के जो लेक्चर्स हैं उसमें देखिए, दो तीन लेक्चर्स मैंने बहुत इंपॉर्टेंट उसमें तैयार किए हैं। पहला तो यह है कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, जो निर्माण की बात मैं कर रहा हूं, संविधान सभा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कि हमारा जो संविधान बना है उसका विकास कैसे हुआ है, हमारी इंडियन फिलॉसफी कैसे चली है, हमारा इतिहास किस तरीके का रहा है। इसके बाद आप देखिए कि जो फ्रीडम मूवमेंट हमारा शुरू हुआ, अंग्रेज यहां आए तो 1919 का संविधान, 1935 का संविधान, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर जो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ वहां से हमने सब क्या लिया है, तो इस तरीके से हमारा संविधान बना है। वो लेक्चर आप जरूर पढ़ लें क्योंकि अभी की जो घटनाएं हैं इनका संबंध अप्रत्यक्ष रूप से उससे है, ये आपको बहुत मदद करेगा। अब आगे चल करके अगर मैंने इस इश्यू पर बात की तो उसे समझने में, तो प्लीज इसकी उपेक्षा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। अब मैं आता हूं कुछ अलग तरह की घटनाओं पर। एक घटना आपने अखबारों में पढ़ी होगी, न्यूज में भी था कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने ये घोषणा की है कि अयोध्या बाबरी मस्जिद के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उस पर वह पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगा। ये एक अच्छी घटना है और उसी के साथ ही कुछ अखबारों ने दिया हुआ है कि हमारे देश के जो लगभग 100 जो बहुत ही मुस्लिम सेलिब्रिटीज हैं, यानी कि मुस्लिम वर्ग की जो हस्तियां हैं आप कह लीजिए, उन्होंने बकायदे याचिका दायर नहीं करने का अनुरोध किया है, जिसमें से हमारे नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, सबाना आजमी जैसी हस्तियां हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि पुनर्विचार याचिका दायर न की जाए। इससे पहले आपने देखा है कि जो मुस्लिम पर्सन आपके जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने कहा है कि पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। इसमें जो हस्तियां हैं वो हर क्षेत्र की हैं, नाटककार हैं, संगीतकार हैं, स्टूडेंट हैं, फार्मर्स हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं। तो यह एक अच्छा डेवलपमेंट है। दोस्तों आज मैं आपको एक नाम बता रहा हूं, कभी कभी सिविल सर्विस प्री में इस तरह के पूछ लिए जाते हैं प्रश्न, और वो है कानन। कानन, ये कानन कौन है? बेसिकली कानन एक डॉग है जो बेल्जियन में जो मॉलिनोस नस्ल होती है उस नस्ल का ये डॉग है, कुत्ता है। और इसकी चर्चा उस समय सबसे ज्यादा हुई थी जब आईएसआईएस का जो सरगना है अबू बदर अल बगदादी, उसको ढूंढने में इस डॉग ने मदद की थी। और अभी इसकी चर्चा विशेष रूप से इसलिए हुई क्योंकि इन्हें व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुलाया और एक तरीके से इसका सम्मान किया है। खैर बहुत बड़ी बात है, तो ये आपके दिमाग में बस थोड़े से दर्ज होने चाहिए। फ्रेंड्स, अखबारों में आज एक खबर है, खासकर बिजनेस स्टैंडर्ड में, कि जो हमारे यहाँ जो मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना आप जानते हैं, मुद्रा योजना के तहत तीन श्रेणियों में कर्ज दिए जाते हैं। पहला है शिशु श्रेणी जिसमें 50,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाता है, दूसरा है किशोर श्रेणी जिसमें 50,000 से 5,00,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाता है, और तीसरा है तरुण श्रेणी जिसमें 5,00,000 से 10,00,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। ये एक तरह से आप कह लीजिए लघु मध्यम वर्ग के उद्योगों की मदद के लिए है। इसके तहत एक बात कही गई है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर एनालिसिस करने के लिए आगे कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको लेटेस्ट डेटा शामिल करना जरूरी होता है। रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं मिस्टर जैन, उन्होंने यह कहा है कि जो मुद्रा योजना के तहत जो ऋण दिए जा रहे हैं उसकी वापसी कम हो रही है, यानी कि उनमें उसमें जो एनपीए है उसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। तो यह एक चेतावनी के रूप में यह बात कही गई है। मित्रों, राजस्थान के बारे में आपको एक खबर आपको देना चाहूँगा कि राजस्थान ने एक नई पहल शुरू की है, और उसने वो पहल ये है कि जो भी स्टूडेंट स्कूल नेशनल में मेडल लाएंगे, स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया स्कूल स्तर की जो नेशनल प्रतियोगिता होती है उसमें अगर वो मेडल जीत कर आते हैं जो खिलाड़ी, तो उन्हें बाकायदे नौकरी दी जाएगी, उन्हें भी नौकरी मिलेगा। और नो डाउट कि अगर आप नेशनल लेवल के स्कूल में जीत करके नौकरी पा सकते हैं तो फिर ओलंपिक है और पैरा ओलंपिक है, इनमें जीतने पर तो आपको नौकरी मिलेगी ही। और इसके लिए राजस्थान सरकार ने बकायदे 2013 का जो विभिन्न सेवा अधिनियम है उसमें संशोधन किया है, और उन्होंने अब एक नई कहावत ईजाद की है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा नारा है, निबंध में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये पुरानी कहावत की लाइन है, और खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन अब हो गया है वो बनोगे लाजवाब। आप देखिए कि कैसे सरकारी नीतियां चीजों को बदलने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों एक खबर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक डेटा जारी किया है, और उसमें यह है कि एक टोटल 180 देशों का ये डेटा है, और उसमें जो भ्रष्टाचार के ये भ्रष्टाचार पर डेटा अपना जारी करता है उसमें भारत का स्थान 78वां है, 78th। ये आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार पर आप देखते हैं कि अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मेन्स में, तो आपके पास कम से कम ये लेटेस्ट डेटा होना चाहिए। पिछले बार इस 81 थे तो हमने कम से कम तीन स्तर पर तो थोड़ी सी आप यूं कह लीजिए कि बेहतर स्थिति हासिल की है। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है, और न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि केंद्र शासित प्रदेश हमारे दो प्रदेश, उसमें एक है दमन दीव और दूसरा है दादरा नगर हवेली, ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इन दोनों को मिला करके वो अब एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने जा रही है। और इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इनकी दक्षता बढ़ सके, जो कागजी कार्यवाही होती है वो कम हो सके, ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। मित्रों समय कम है, हो सका तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स मैं आपको कल दूंगा। अब मुझे चाहिए कि मैंने आज जो मुख्य विषय लिया है उस पर बातें करूँ। ये जो विधेयक है इसका नाम है ट्रांसजेंडर पर्संस, ब्रैकेट में है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स 2019, यानी कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण विधेयक 2019, ट्रांसजेंडर जिसे हम किन्नर कहते हैं। ये जो विधेयक पारित किया गया है, लोकसभा पहले पारित कर चुकी थी, कल राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया है। इसमें जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप अपने दिमाग में रख लीजिए। पहला तो और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि समाज में जिस तरह से आम लोगों के अधिकार होते हैं हर क्षेत्र में, ठीक उसी तरह के अधिकार अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भी मिलेंगे। यानी कि रोजगार का अधिकार होगा, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, और अगर इनके खिलाफ कोई भी अपराध किया जाता है तो बकायदे आईपीसी जो है इंडियन पेनल कोड, उसी के तहत केस भी दर्ज होंगे। अब जानते हैं कि भारतीय समाज में जो किन्नरों की स्थिति है उससे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। इसमें जो दो व्यवस्थाएं की गई हैं, दो तीन व्यवस्था, उसकी ओर मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा दोस्तों। अब पहली जो व्यवस्था की गई जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर किसी के यहाँ ट्रांसजेंडर बच्चा हुआ है तो जो माता पिता हैं वो बकायदे उस बच्चे का पालन पोषण करेंगे। न तो वो अपने बच्चे को निकाल सकते हैं और न ही किन्नर समुदाय आकर के उस बच्चे को जबरदस्ती ले जा सकता है। ये दोनों स्थितियां होती हैं इस समाज में कि एक तो माता पिता के लिए मुश्किल हो जाता है, फिर किन्नरों को पता लग जाता है तो आकर के उस बच्चे को ले जाते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकेंगे, बच्चे बकायदे उस घर में रहेंगे जहां उनका जन्म हुआ है और माता पिता उसका पालन पोषण करेंगे। और यदि माता पिता को लगता है कि उसका पालन पोषण करने की स्थिति में नहीं है तो बकायदे वो सक्षम न्यायालय से अनुरोध करेंगे और न्यायालय उन्हें अनाथालय या बाल गृह में भेजने की व्यवस्था करेगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह कि ट्रांसजेंडर बच्चे का जहां जन्म हुआ है उसको उसी घर में रहने का अधिकार होगा, और यदि माता पिता ऐसा नहीं करेंगे तो माता पिता को भी दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो दंड के भागीदार नहीं होंगे। और फिर ट्रांसजेंडर लोगों के हितों के लिए बकायदे एक राष्ट्रीय परिषद भी बनाई जाएगी। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, सच पूछे तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन ये बहुत लेट हुआ है, मतलब 70 साल लग गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप देखिए कि जब हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो जो हमारा सबसे पहला अधिकार है, मूल अधिकार है, वो है समता का अधिकार, जिसे समानता का अधिकार कहते हैं। सोचिए वो पहला है, पहले का मतलब है कि हमने टॉप प्रायोरिटी पर रखा है। आप देखिए कि जो हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक है वो समता का अधिकार है। तो एक तो समता का अधिकार हमारा टॉप, हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है, और इसके जो इसका जो 15वां है अनुच्छेद 15वां, ये आपके दिमाग में रट जाना चाहिए क्योंकि अभी भारत में खासकर इन सब चीजों को लेकर के जो मांग हो रही है, जो अधिकार को लेकर के मांग हो रही है, उसमें समानता का अधिकार है और समानता के अधिकार के तहत इसका बहुत बड़ा रोल है, जिसकी चर्चा मैं अनुच्छेद 15 के तहत करने जा रहा हूं। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि इन सब के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। क्या आपको नहीं लगता है कि ट्रांसजेंडर के साथ जो भेदभाव किया जाता था उसका आधार लिंग ही था, जेंडर ही था? तो 70 साल लग गए, आप यूं कह लीजिए कि ट्रांसजेंडर को यह अधिकार प्रदान करने में, जबकि संविधान ने ऑलरेडी, सोचिए कि मूल अधिकारों के तहत उन्हें यह अधिकार दे रखा था। इस बीच में सामाजिक चेतना में भी परिवर्तन हुए हैं, इनको लेकर के बहुत सी फिल्में आई हैं, बड़ी करुण फिल्में रही हैं, और उन फिल्मों में एक दाया फिल्म थी जो मैंने बहुत पहले देखी थी, लगभग मुझे लगता है कि 1995-96 के आसपास देखी थी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। तो दोस्तों ये इसको बहुत ही वेलकम करना चाहिए, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से तो देखिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे सीधे समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, अलका चंदर पंजाब से, बारोत मोहित अहमदाबाद गुजरात से, अंजलि सिंह नई दिल्ली से, चिराग ताम्रकर भोपाल से, और आदर्श शर्मा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।